उसमें करीब करीब जितने पुरुष के सात विशेषण हैं, छह हैं, छह प्रकार के विशेषणों को का अर्थ बतलाया, उसकी व्याख्या की, विभिन्न प्रकार के अर्थ बतलाए। उसमें अंत में कह रहे हैं वर्धयन काम देवम ब्रजपुरु बनिता नाम, वर्धयन काम देवम। इसमें वर्धयन जो है वर्तमान काल की क्रिया है, वर्धयन और पूरी स्त्रीगण ब्रजपुर बनिता नाम वर्धयन कामदेवम। ब्रजपुर स्त्री वर्णित विक्रियांचति इदंच विष्णु, वही है ना विक्रियांचति, ताकि इसमें है विक्रियांचत श्लोक कौन सा है? विक्रियांचति पी में भी, विक्रियांचत में भी वर्तमान काल, अतएव इसके द्वारा ब्रज में कृष्ण की नित्य लीला का बिहार का वर्णन किया। ब्रजपुर वनिताओं के साथ नित्य ही वे लीला विलास बिहार करते हैं, इसके द्वारा यह सूत्र वर्धयन और विक्रियांचति शब्द के। इस प्रकार उन उन स्थानों में उन उन लीलाओं का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। जैसे यहां पर विरह है इस प्रकट लीला में, और प्रकट लीला में तीन मात्र महीने का ही केवल विरह सुना जाता है, और वह भी विरह नहीं, उनको सपने जैसा मालूम होता है कि कृष्ण मथुरा या द्वारका गए थे और कृष्ण जाते नहीं, वह वहीं रहे। और ब्रजपुर बनिता नाम वर्धयन कामदेव में ये भी दिखला रहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों में इस जगत प्रकट जगत में भी कहीं ना कहीं वह लीला जरूर होती है। कोटि कोटि देर आर मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, और आला चक्र की भांति वो लीला सब जगह कहीं न कहीं चल रही है, कहीं जन्म लीला चल रही, कहीं किशोर लीला चल रही, पौगंडक चल रही है, कहीं द्वारका की लीला, कहीं कुछ चल रही है, और एक जगह में वही लीला को पहुंचते पहुंचते ब्रह्मा का एक दिन लग, वही लीला यदि घूमती है घूमतम से, जैसे जन्म लीला है इस ब्रह्मांड में आज से 5000 वर्ष पहले हुई, वो लीला घूम करके ठीक आज से 5000 वर्ष वो पहले जैसे कि है समय में वो वहां पर आई, इसलिए वो लीला नित्य है। यहाँ पर भगवान श्री हरि सदा मथुरा अवस्थान करते हैं, जत्रो सन्निहित मथुरा जत्र सन्निहित
हरि सब समय वहां पर अवस्थान करते हैं, वर्तमान रहते हैं। मथुरा छोड़कर के नहीं जा, कृष्ण ब्रज को छोड़कर के नहीं जा, कृष्ण द्वारका को छोड़कर के कहीं नहीं जाते। इसलिए वहां की लीलाएं भी नित्य हैं। इसलिए मथुरा में भी हैं, ब्रजपुर में तो है ही है, द्वारका में भी है। वहां पर अपराधिक जगत में विशेष विशेष पीठ में विशेष विशेष रूप में वहां रहते हैं। वहां पर भी द्वारका का पीठ है, मथुरा पीठ है, किंतु आवागमन कृष्ण का साक्षात रूप में नहीं होता है। इसलिए एकांतिक जो भक्त हैं, इस विषय में उनका अनुभव ही प्रमाण है। जैसे वैयासकी, बादरायणी मैंने सुखदेव गोस्वामी, नारद, व्यास, इन लोगों का अनुभव है, और अनुभव के द्वारा शास्त्रों में उन्होंने विवेचन किया है, नारद पुराण में या और सब पुराणों में, भागवत पुराण में, उनके जो अनुभव है वो भी प्रमाण है। इसलिए अनुभव के द्वारा भी देखा जाता है कि वो नित्य लीला, कृष्ण की सारी लीलाएं नित्य हैं, ये अनुभव करते हैं। एक जगह में बैठ करके समाधि स्थान देखते हैं कि लीला वो प्रकट हो गई। अभी भी ऐसा कोई साधक हो तो उसके हृदय में और बाहर सर्वत्र ही वो लीला प्रकट हो जाएगी। हम लोग का स्टैंडर्ड, भक्ति का स्टैंडर्ड जो है इतना ऊंचा नहीं है, नहीं तो यदि इतना ऊंचा रहेगा तो हम लोग भी अनुभव कर सकेंगे। ये ब्रिज में उनकी सदा बांसुरी बजती है, लीला विलास करते हैं, द्वारकापुरी में भी वो लिखते हैं। इसलिए इस जन्म में ऐसा भजन होना चाहिए कि हमारा भजन उस स्टैंडर्ड में, जो कुछ इसके अंदर में बाधाएं हैं उनको बाधाओं के लिए शब्द संकल्प ग्रहण करना चाहिए। काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मद, मोह सबको दूर रखने की चेष्टा करें। आंतरिक रूप से भक्ति में जो अनुकूल है उसे ग्रहण करें, भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको निषेध करें, उसका वर्जन करें। और कभी कह रहे हैं मथुरा गमन आदि के द्वारा ब्रज से यदि प्रकट लीला में वो जाते हैं तो इसके द्वारा गोपी गणों के विरह दुख राशि सूचना होने, गोपियों की अत्यंत अधिक विरह की सूचना भी हो रही है। यदि वो जाएंगे तब तो विरह होगा, वह गमनागमन लीला भी उनकी प्रेम पराकाष्ठा को, क्या प्रेम पराकाष्ठा को पूरा करती है। विरह नहीं रहता, केवल मिलन रहता, प्रेम अंतिम दशा तक नहीं पहुंचता। इसलिए गोपियों का विरह भी गोपियों के प्रेम की अत्यंत चरम उच्च अवस्था को दूषित करता है, बतलाता है। इसी अभिप्राय से उक्त लीला इत्यादि जो कहा गया यहाँ पर ब्रज से मथुरा द्वारका गमन इत्यादि, और जो विरह दुख इत्यादि का लीलाओं का जो वर्णन किया, गोकुल क्रीड़ा के मध्य में ही समझना चाहिए। ये सब गोकुल की ही ये क्रीड़ाएं हैं। मूल गोकुल है, घर गोकुल है, वहां से कहीं बाहर जाते हैं आते हैं किंतु फिर लौट करके ये गोकुल में ही आते। यहां भी कहा, यह भी कहा गया है जो सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, सब जीवों के हृदय में ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा प्राणी नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग, जिसके अंदर में अंतर्जामी के रूप से प्रभु का निवास नहीं है, किंतु वही देवकी के पुत्र रूप में उनके पेट में अवस्थान कर रहे हैं, किंतु वही अंतर्यामी यहाँ पर सब जीवों की जो अंतर्यामी है साक्षात रूप में पुत्र के रूप में जेवटी जी के गर्भ में अवस्थित है। अर्थात और सब जगहों में तो अंतर्यामी के रूप में रहते हैं, किंतु जेवकी के हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहने पर भी पुत्र के रूप में वो अवस्थित रहते हैं। उसी तरह से भक्तों के हृदय में और लोगों के हृदय में अंतर्यामी रूप से चतुर्भुज आकार या अंगुष्ठ परिमाण आकार में अंतर्यामी रूप में रहेंगे, किंतु भक्तों के हृदय में वो कैसे रहेंगे? भक्त माने कृष्ण के एकांतिक ब्रजपरक भक्त हैं, उनके लिए वो कृष्ण के रूप में, जैसा भाव किसी के अंदर में देवकी नंदन, किसी के अंदर में सखाओं कृष्ण के सखा के रूप में गोप सखा, और किसी के अंदर में गोपियों के प्राण बल्लभ कृष्ण के रूप में ये अवस्थान कर। नाउ यू कैन ट्रांसलेट।
They have this sense that Krishna is gone to Mathura and feel separation. So those moons are also present in the Nichile Navakanal, or only as a mood, not as an actual pastime taking place there. So another meaning of Vadayan or Vikriti entity, that Krishna's always performing his pastimes, is that there are millions and millions of unlimited material universes. And Krishna's pastimes are moving around the universes like Alak Chakra. Alak Chakra means a fire brand. There is fire on the end with one rope, and it's spun around like this very quickly, and it makes a circle of fire. So Krishna's pastimes are moving like Alak Chakra throughout all the universes. In one universe, right now, Krishna is being born. In another universe, right now, Krishna is doing his Bhagavad-Lila, childhood pastimes. In another universe, right now, he's doing his Bhagavad-Lila, after his infant pastimes, his childhood pastimes. In another universe, his Kaishyo-Lila, his teenage pastimes, adolescent pastimes are going on. So, in this way, the Lila is going around all the universes. But how long does it take to spin all the way around and get back to the same position? One day of Brahma. So Sri Guru was giving an example that Krishna, his birth was here in Vrindavan 5,000 years ago. And then all these leaders will move around all the millions of universes, and he will come back to here at the same point of his appearance in the space of one day of Brahma. So all of these astonishing revelations in regard to the nature of Krishna's pastimes, prakat and aprakat, his gavana-gavan, and the internal moods, all of these things, they have been realized by Sri Shukadeva Goswami, by Sri Narada Rishi, by Sri Vyasadeva, and therefore in their books like Naradiya Purana and other books, they have described the pastimes in this way. Why? Because they have seen them and had direct realization of their astonishing transcendental nature. So they have realized and seen all these things in their trance. So from this, we can infer that our standard of bhakti is not very high. Otherwise, if bhakti is somewhat developed, then we would also have this kind of realization of the nature of Sri Krishna's pastimes. And therefore, Srila Gurudev said, we don't realize these things because we have many internal obstacles. So we should make a very strong sankalpa, a very strong vow, to try to give up in our life our entanglement in calm, cold, low, warm, madhavatsalya, in lust, in anger, greediness, enviousness of others, bewilderment, pride, all of these things. We should try very carefully to give them up. And with a very strong determination, only accept those things which are favorable for our process and development on the path of bhakti, and very strongly, unequivocally reject all those things which would be detrimental to the development of transcendental love. So, in this line, some more very deep moods have been expressed. Praja Pura Bhagita Varyan Kamadeva. Krishna is that Kamadeva who increases the love of the gopis of Vrindavan. How? By Brajapura. By sometimes being in Braj and sometimes leaving and going to Mathura Dwarka, etc. and coming back. So the internal mood here is that without separation, these pastimes of separation, then praying cannot be Vadaya, that is increased to its highest point. So the pastimes of through the pastimes of separation, Krishna does Vadaya, he increases the calm of the gopis of Vrindavan. So in all of these dhams, Gokul is the mool, is the root of everything. It is original. And from there all other pastimes expand. This verse begins with the phrase Jayati Janani Vaso. All glories to that Krishna who is Janani Vas. He lives in the heart of everyone. So these words indicate that human beings, animals, insects, every species of life. There's not one living entity or one species of life in whose heart Krishna is not present. He's present everywhere. But even though he's everywhere, he comes into the womb of Devaki, Devaki Jambavado, and appears in the form of her son. So this indicates that Krishna is Bhagavan, and he's present everywhere as Antaryami, that means the super soul. But he's also present with his devotees. But when he's present with the devotees, he's not present as Antaryami, a super soul. Everything depends on the nature of their devotion towards him. And therefore, if the devotee is doing upasana in mode of servant, then Krishna will appear as master. If he is doing upasana in the mode of a friend, Krishna will appear in his heart as friend. If he is doing upasana in vatsalya mode, Krishna will come as a very darling son. And in murdering mode, he will become one's beloved. So this is the one of the specific meanings of Janani Vaso.
Manjari kaha hai? Choti Manjari, Shinga? Where is Shinga Manjari? Not here?
Eugene. Huh? Eugene. Where is Manjari from Eugene? Is here?
Not here. La Prasanna Dasa to Kirtan Kalga. Dekhe sune. Rajar Kushi Kirtan.
Yeah.
द्वारका लीला मथुरा लीला की नित्यता बतलाते हुए गोपियों का विरह भी एक तरह से नित्य माना, बिना विरह के संभोग की पुष्टि नहीं होती, इसलिए उनका मथुरा और द्वापर में द्वारका में जाना भी वर्णन किया। और भी कारण, जादवों के जितने बड़े बड़े वीर हैं सात्यकी इत्यादि और बड़े बड़े महारथी हैं जो कृष्ण के सेवक हैं, उनके सेवक ये सभी लोग और धर्मों का सृजन करने वाले बड़े बड़े दुष्ट राजाओं को वध करने में समर्थ हैं। जब सेवक ही लोग समर्थ हैं तो प्रभु बात ही क्या। तथापि अपने बाहुजुगल के द्वारा दो प्रकार से पांडव इत्यादि और वीर जो कृष्ण पक्षी हैं उनके माध्यम से और स्वयं अपनी भुजाओं से भी बहुतों का कृष्ण ने पांडित बहुदेव इत्यादि का वध स्वयं उन्होंने किया। इस प्रकार से अधर्म का विनाश किया जिसके लिए वो अवतीर्ण हुए थे। और भी कारण थे, वे स्थावर जंगम चराचर पाप को विध्वंस करने वाले हैं, जिनके नाम मात्र के स्मरण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण वाल्मीकि, अजामिल और लाखों लोग हैं नाम के द्वारा ही। और जो परस्त्री गोपीगणों के जार भाव से काम वर्धन करके परम दुख का ही विस्तार किया था, ब्रिजी नग्न, ब्रिजी मैंने दुख, क्या दुख, गोपियों के जार भाव के होने से मिलने में बहुत दुर्लभता है, कृष्ण को भी गोपियों को भी दुर्लभता है दोनों। इसका जो विरह होता है, दुख होता है, दुखी विस्तार किया है, किंतु इसमें कोई उनका अपराध नहीं है, क्योंकि श्री मुखे न मृदु मधुर मुखे न स्मित हास्य के द्वारा इस प्रकार परचित्त को दाहक करने वाले हैं। आया कोई समझ में? ब्रजपुर पनितानंद ब्रिजी नग्न फिर चेर ब्रिजी नग्न। कृष्ण कैसे हैं? सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, विशेष करके गोपियां कृष्ण को उपपति भाव से भजन करती हैं जार बुद्धि से, और कृष्ण भी स्वयं को उपपति मान करके उनसे उसी प्रकार से ही दुर्लभ रूप से मिलना जुलना उनका है। जो कुछ भी विलास है वो जार बुद्धि से उपपति भाव से है, इसलिए कृष्ण को भी मिलन गोपियों से करने में मिलन मिलित होने में भी बहुत संकट है, बहुत दुर्लभ है, और गोपियों के लिए भी कृष्ण का मिलन बहुत ही कठिन है। तभी मृदु मधुर हास्य के द्वारा एक प्रकार परचित्त दाहक स्वभाव कृष्ण का स्वभाव है, लोगों का चित्त हरण कर लेते हैं और वह व्यक्ति विरह से ताप से जर्जरित हो जाता है। तथापि गोपीरा गोपियां जगत के चित्त विमोह उस हसी हास्य से अपने काम दा को ध्वंस कारक बोलिया से ही हसी गुणन बात। यद्यपि गोपियों का चित्त दग्ध करते हैं अपने उपपति भाव के मुस्कान से, तभी गोपियां इन कृष्ण की मधुर हास्य को स्मित हास्य का गुणानुवाद करेंगे, ग्लोरीफाई कर। अतएव इसमें कृष्ण की करुणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा जाता, सब विषयों में कृष्ण की करुणा है। इसलिए सुस्मित श्री मुखेन मंद मुस्कान यहां पर कृष्ण का बोला गया है। अतएव अपात विरोध व्यंजक उक्ति, यहां पर विरोध परस्पर विरोधी वाक्य हैं, सबका दुख खंडन करते हैं और फिर उनको विरह का कष्ट भी देते हैं। दोनों प्रसन्न भी होती हैं, उनका गुणानुवाद भी करती हैं और उस गोपियों के हृदय में उस मंद मुस्कान से ताप वर्धन करते हैं, काम ताप। इसलिए यह संगत ही हुआ है। इसमें भगवान का भक्त वात्सल्य इत्यादि गुणों का वर्णन किया गया है। यह जो मैंने कहा इस श्लोक की व्याख्या में मैंने दिग्दर्शन दिया, और भी अर्थ हो सकते हैं, केवल मात्र मैंने दिग्दर्शन थोड़ा सा इसके विषय में। कृष्ण की लीला अपरंपार है, इस श्लोक का अर्थ भी बहुत है, किंतु मैंने दिग्दर्शन मात्र किया। यू कैन एक्सप्लेन
himself. So, Dhruva Dasa Dharma, by his own arms, he destroys many demons. But actually, Swaraj Gurudev is his own arms and also means through the arms of his associates. Though he can do everything, he's the best in the Yang dynasty, he can do everything, but he arranges for his associates to destroy those who are making disturbance on a path of religious life. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he destroys the suffering of moving and non-moving living entities. But actually, only his name can do this. Just the name of Krishna can destroy all suffering, as in the life of Radhi Kirishi, also Ajamil. There are so many examples in Shastra. So only his name can do this. But what does he do? Oh, not by his, just his name, but he personally appears in this world and performs his very beautiful pastimes, smiling and playing on his flute, and takes away the visitors in this way. So, the conclusion is that if we look at each of the adjectives describing Krishna in this verse, we see that he doesn't need to do all of these things, and yet he does them. Why? Because he's so merciful. His bhakta vatsalya, that means his affection for his devotees, is shining in every phrase within this verse. Here, Vrajapura Manita Bhavyan Kamadeva, Krishna increases the praise of the gopis. What mood do gopis have? That's called Jarabhuti. Jarabhuti means they don't think that Krishna is God, but they conceive of him as their paramour. As a very beautiful young boy of their village. They're not married to him, they're married to someone else, and illegally, against all religious principles, they want to meet with him. So this conception is called Jarabhuti. And Krishna himself, he takes the position of Upapati, then Paramahansa. So, in this case, it's extremely difficult for gopis to meet with Krishna, and it's very difficult for Krishna to meet with the gopis also. Many obstacles come in the way. So here, Stirachara Brijinagana, Krishna destroys Brijina, the distress. What is that? It means that because gopis have Jarabhuti, they feel so much distress that there are many obstacles to meeting with Sri Krishna. But Krishna, he destroys all of the obstacles. How? Through the agency of his pastimes, he meets with them, he smiles towards them, and glances at them very mercifully. And in this way, he steals their hearts and destroys all their miseries. So everywhere in this verse, we see the kindness of Krishna. So, in one sense, Krishna performs a lila in which he gives pain. What is that? Oh, he has this relationship. This gopis having Jarabhuti towards him, and he is having Upapati Bhav towards them. So this pastime is creating some suffering. But by his lila, he destroys all of this. Also, by his smile, he gives them another type of suffering. What is that? Kamta. The burning of calm, because his beauty and his smiling increases their calm. This is another type of suffering. And by his pastime, also takes away this suffering. So Srila Gurudev described how the pastimes of Sri Krishna are unlimited. And those pastimes are being included and hinted at in this verse. And therefore this verse is also unlimited. And even though Gurudev for many days he's been explaining confidential meanings of each word of the verse, still Gurudev said, I have not explained it actually, but I've only touched just a fraction of the significance present within this verse.
Ek baat aur samjhiye, kaam gatri mantra roop hai krishner swaroop सार्ध अक्षर सार्ध 24 अक्षर तार है से अथर चंद्र चय से जे अक्षर चंद्र चय कृष्ण कराए उदय त्रिजक कैल काम मय। श्री कृष्ण चंद्र जी का स्वरूप मंत्रात्मक है, वो काम गायत्री रूप जिसमें साढ़े चौबीस अक्षर हैं, इसी के द्वारा कृष्ण की उपासना होती है। ब्रज द्वारका के प्रद्युम्न कामदेव है ना, प्रद्युम्न और लौकिक जो कामदेव हैं, ये सब कृष्ण के वैभव प्रकाश और अंत में छाया प्रकाश है, जगत वाले छाया प्रकाश हैं और द्वारका के वैभव प्रकाश हैं। इसलिए साधक भक्त के लिए काम गायत्री की बहुत आवश्यकता है। गोपाल मंत्र तो है ही है संबंध देने वाला, और ये है उपासना का मुख्य अंग। उपास संबंध के बाद में क्या कैसे उनकी सेवा होती है, इस काम गायत्री में बतलाया गया। जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन नियमित रूप में गोपाल मंत्र और काम गायत्री इत्यादि की उपासना करेंगे, धीरे धीरे उनके प्राप्त काम नष्ट होंगे और चित जगत की अनुभूति, कृष्ण की अनुभूति उनके हृदय में होगी। शेष कंक्लूजन आम ही करता क्या ना, शेष होगा जेते पारो ना जेते पारो तुम्हारे देख तो जाओ क्या पेशे से है।
यहाँ शिव बड़े रिस्पेक्ट में अलग तो सिग्नेचर्स ऑफ़ द वर्ल्ड काम दे जब शिव जैसा ने कार्य किया इस तरह की डेट द काम का शिव मंत्र रूप कृष्ण है उस स्वरूप दैट द काम गाय शिव मंत्र इस कृष्ण स्वरूप इस ऑन फॉर्म इट इस कंपोज्ड of 24 and a half syllables, and each syllable is one part of the transcendental swarup of Sri Krishna. And this mantra awakens calm, focus mode, as described in this verse. Krishna's upasana or the service of Krishna is affected through the medium of this mantra. We should know that there are three types of kamdev. Laukik kamdev, that means the kamdev of this material world. That is the material demigod who was burnt by Lord Shiva, by his flesh. Then there is a transcendental kamdev. He is Pradyumna, the son of Sri Krishna in Dwarka. He is a transcendental kamdev. But in Praja, only Krishna himself is Kamdev. So, Krishna is the original Kamdev. Prajumna in Dwarka is his Vaibhav Prakash of the original Kamdev. And the demigod in this material world who affects the hearts of all conditioned souls with lust is the Chaya, or the shadow of the original Kamdev. So, this Kam Gayatri Mantra